ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जाग्जरोक्षिसंविदधतङ्पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेम दामोदरम्।
आज एकादशी तिथि है, सब लोगों ने एकादशी पालन किया, इसका बहुत ही महत्व है। अभी आप लोगों के सामने ये महाराज जी एकादशी का महत्व वर्णन कीजिए।
সমস্ত भक्तवृंद मां बोला भक्तवृंद আজ আমার পরম সৌভাগ্য আমার ঠাকুর
মুখে লাগিয়ে বলুন
নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ আমাকে কৃপা করে এই সভার মাধ্যমে আসন প্রদান করেছে। আমার মনে হয় সেই সনাতন গোস্বামীর কথা দিদির সেটা অন্যতম অন্যরকমের ব্যাপার। সনাতন গোস্বামী বলেছিলেন রাজা আমাদের প্রীতি করে সময় বন্ধন সেটা হলো সংসারের ব্যাপারে। আজ আমার খুবই সৌভাগ্য যে মহারাজ আমাকে প্রীতি করছেন, এটা আমার প্রেম বন্ধন আবদ্ধ করার জন্য তিনি আছে, জানি স্নেহ প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন। আমার প্রণামে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন একটা সম্বন্ধে কিছু বলার, কিন্তু আমার বলার তো যোগ্যত নয়, মহারাজ জানেন এটা যখন কলি প্রভাব খুব প্রবল আকার ধারণ করল তখন পাপ পুরুষের প্রভাবটা বেশি হয়ে গেল, তখন একাদশী মানে তখন বলছেন যে ধর্ম একাদশী রূপে আমি অবতীর্ণ হচ্ছি, তোমার কোন চিন্তা করার দরকার নেই। তখন সেই ভগবান একাদশী রূপে কলিতে অবতীর্ণ হলেন। উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আমাদের সমস্ত ভক্তের কর্তব্য যা হরিমুখ হইলেন তার তো কথা বলার আমার কোন অধিকার নাই, কিন্তু যারা যারা হরিমুখ আছেন তারা সকলেই যেন হরিনাম গ্রহণ করে আর এই একাদশী ব্রত পরিপূর্ণ ভাবে পালন করে ভগবানের সেবা করেন। এই একাদশী ব্রত পালনের প্রভাবে জীবের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সিদ্ধ হবে, জীব আর সংসার আবদ্ধ হবে না, ভগবানের পার করতে স্থান পাবে।
সংক্ষেপে বলবো একেবারে তো পুরা বিশ্ব বলে দিব না, হিন্দিতে বলো, আজকে বাঙালিরা নাই বোধে
নিত্যলীলা প্রসন্ন বিশুপাত অষ্টতর সতসমান প্রণাম। करुणा के भरणालय से महाराज जी मुझे आदेश दे हैं एकादश के महात्मा कुछ वर्णन करने के लिए। अभी अभी पुष्पपाद महाराज जी आप लोगों के निकट एकादश के महात्मा वर्णन किया। कथा संग पुराण में कई प्रकार के एकादशी महात्मा वर्णन किए गए, जिसमें वर्णन करते हैं एक बार सर्वोत्तम परम प्रदत्त भगवान विष्णु भ्रमण करते करते एक बार जब महाराज के निकट पधारे, उस समय जब महाराज भगवान विष्णु के चरण कमल अर्चन किया, यथाथ उनके समान करके पादुक और आसना करके बैठाया और उनके साथ वार्तालाप भी करने लगे। इतने समय दक्षिण दिशा से अर्थात जब महाराज की दक्षिण दिशा से লোক শিক্ষা দিয়ে মহারাজ দ্বাদশ মহাজন্মে অন্যতম যা মহারাজ প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি বলি আসুন নরক পে যাতে
समस्त जीव जो लोग धर्म और धर्म आदि पालन नहीं करते हैं, ऐसे दुष्ट जीवों के दंड देने के लिए जमालय, और इस जमालय में समस्त वो समस्त पापी लोग आते हैं और मेरे कुछ लोग जो है उसको दंड देते हैं और वो सामने ही करने पाते हैं, इसलिए वो आत्मनाथ करें आत्मनाथ करें बहुत प्रकार की उसी पत्र कहा गया अनेक प्रकार के नरक की वर्णन है, 84 नरक नहीं कितने 84 लाख नरक की भी वर्णन शास्त्र में है, श्रीमद्भागवत से लेकर के स्कंद पुराण
अधिक वर्णन मत करो तुम असल विषय पाओ।
इस प्रकार की प्रभु सुन करके भगवान नाथ भगवान कृष्ण के हृदय फिटल गए, भगवान विष्णु ने मैं देखना चाहता हूँ, भगवान विष्णु वह नरक के निकट आए, जब भगवान विष्णु के दर्शन करते ही समस्त जीव आपके नाम से प्रभु के निकट प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमको उद्धार कीजिए, प्रभु के प्रभु कहने लगे, शायद भगवान विष्णु कहने लगे मेरे अमोघ दर्शन से आप समस्त पाप से मुक्त हो गए, आज से आप लोग अपने स्थान पर लौट करके जाए सभी पाप सब लोग पाप करके और एकादशी करने और एकादशी करके सब आपके धाम में जाए। महाराज आप ऐसे महान धरात और राजा बने और आपके पुत्री भी राजधानी बने। यह सुनते ही वह राजा रूपानंद के बहुत उत्साह लगे और रत्न रूपानंद आकर के अपने राज्य में झेड़ा पीटने लगे। जे आज के सब लोग एकादशी करें, जो एकादशी पालन नहीं करेगा उसको हमारे राज्य से निकल दिया जाएगा। अर्थात दशमी के दिन स्वयं महाराज अपने लोगों के द्वारा धन प्राप्त करते थे। नगर नगर में गांव गांव में एकादशी होगी, सब लोग एकादशी पालन करना पड़ेगा। जो लोग एकादशी नहीं पालन करेंगे और किसी प्रकार से दंड लग जाए, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भोजन किया उसके मृत्यु दंड अथवा राज्य से उसके निकल दिया जाएगा। इसी प्रकार उनके राज्य में सब लोग भयभीत होकर के एकादशी पालन करते थे। एक दिन की बात भी महाराज धर्मानंद
करनी पड़ेगी। राजा एकादशी यदि पालन करेगा तो दुर्बल हो जाएगा, तो फिर शासन नहीं कर सकता है, इसलिए आपको भी नहीं करना पड़ेगा। तब ब्राह्मणों को बुलाया
और उससे वो भी बोली कि महाराज आपको भी एकादशी करना पड़ेगा, किंतु आप एकादशी नहीं करना पड़ेगा।
एकादशी नहीं करना पड़ेगा, एकादशी नहीं कर सकते
आप, एकादशी नहीं कर सकते। क्यों? एकादशी करना शरीर दुर्बल हो जाएगा और दुर्बल हो जाएगा, शासन कर नहीं पाएंगे और अनेक प्रकार के भोग विलास कर नहीं पाएंगे। इसी प्रकार वो भी कितने ऐसे भी है, वो ब्राह्मण के भी बुलाया, वो ब्राह्मण के पैसा दे करके और ऐसे उनके श्लोक रचित कर दिया, स्वरचित श्लोक के द्वारा और कंठस्थ कर दिया।
राजा को एकादशी नहीं करना चाहिए, उन लोगों से कहलवा
दिया। सदवा नहीं करेगा, विधवा करेगा।
और भी बोले जे एकादशी कौन करेंगे? एकादशी केवल जो संत महात्मा और जो वृद्ध आदि लोग हैं वही लोग करेंगे, और जो नवर युवक युवती वो नहीं करेंगे। विशेष करके सदवा लोग और युवती लोग एकादशी नहीं करेंगे। इसी प्रकार पंडित लोग भी सभा में ऐसे स्वरचित श्लोक द्वारा और उसमें
मोहिनी अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, ये आप नहीं करेंगे, वो तो करेगी ही नहीं, आप भी नहीं करेंगे।
हाँ,
एक साथ पर आप एकादशी कर सकते हैं,
एक साथ पर आप एकादशी कर सकते हैं। एक क्या, यदि आप और आपके प्रथम पत्नी अर्थात महारानी दोनों और अपने पुत्र और धर्मांवर इसके इसके सी को यदि आप एक उसको काटे और हाथी मुख से हंसते हुए उसके काटे और किसी प्रकार से रहते हुए हंसते हुए उसके सी को यदि काटे तब आप एकादशी कर सकते हैं। इस कथा सुनते ही तो उस समय प्रथम रानी एवं धर्मांगर दोनों ही कहने लगे, हे महाराज आप इस शब्द को मान लीजिए, कोई चिंता नहीं है, प्राण जाए किंतु वचन नहीं जाए, एकादशी धर्म का स्थापन करना है।
ऐसा कहो जो उसने एक शर्त है, आप अपने बेटे का सिर काट करके हमें दीजिए तब तो आप कर सकते हैं। तब राजा बोले नहीं तुम चली जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। तब रानी आकर के बोली, महाराज बेटे को चले जाने से कोई बात नहीं, एकादशी नहीं नष्ट होनी चाहिए, इसलिए हम और आप दोनों मिलकर के काट कट के इसको सिर दे दे। और उनका लड़का भी राजी हो गया, जब काटने के लिए जा रहे हैं उसी समय में सब
भगवान उस समय जब काटने के लिए प्रस्तुत है तब सब उस समय समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुई। और भगवान विष्णु प्रकट होते हुए माया को मोहिनी देवी अपने स्वरूप प्रकाश प्रकाश करके दूर से भगवान विष्णु के प्रणाम करके बोले, ये मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, कोई स्त्री नहीं हूँ, मैं साक्षात माया देवी अर्थात किस प्रकार धर्म की निष्ठा और किस प्रकार एकादशी की निष्ठा वो मैं प्रतिपादन करना चाहती
हूँ परीक्षा करने के लिए, आपकी परीक्षा कर।
इस प्रकार रूपांगद राजा एवं धर्मांगद एवं महारानी इस प्रकार जगत में एकादश के प्रतिष्ठा कैसी होगी, इस प्रकार शास्त्र में कहते हैं हम लोग के जीवन रहते हुए पांच साल से सात साल से लेकर के आधी साल तक सब लोगों के एकादशी करनी चाहिए।
और भी इन लोगों ने उसको ये वरदान दिया, जो लोग विद्या एकादशी करेंगे या लोग जो नहीं करेंगे उनका सब जितना पुण्य है वो मोहिनी को मिले, यदि एकादशी नहीं करेंगे उनका जितना पुण्य है सब पुण्य मोहिनी को मिले। इस तरह से एकादशी का महत्व है। What he told you, understand something? So you should tell in brief.
So it said that one time the Supreme Lord Vishnu went on a tour and visited the abode of Yamaraj. So Yamaraj is the god of death. He's in charge of karma. According to one's pious or impious activities, then he gives the result. So when the Supreme Lord Vishnu went to the abode of Yamaraj, then from the southern direction he heard a crying. And all the people who perform bad activities for some time they go to hell and suffer the results. Therefore all were weeping and crying. Then Sri Vishnu asked to Sri Yamaraj, who is not an ordinary person. Sri Yamaraj is one of the 12 Mahajans, spiritual authorities. Therefore Lord Vishnu asked Yamaraj, what is that noise I am hearing? Then Yamaraj said, oh Lord, you know everything, since you are crying. She may desire to know that is the crying of the living entities who are visiting hell. Then Yamaraj begged, how can I be saved? So at that time, from the body of the Supreme Lord manifested one deity, one goddess. Her name was Ekadasi. Therefore Lord Vishnu gave the benediction, whoever respects Ekadasi and follows Ekadasi, fact that sin is very easy, just perform sins, do a courtesy and go back to Godhead. Then Lord Vishnu said there's one condition. If one follows the Vidya Ekadasi. Ekadasi means
Ekadasi means
11 days after the full moon and 11 days after the new moon. So today is Ekadasi. The one who follows Vidya Ekadasi, when the Ekadasi is mixed with the previous Dasami, and that is not pure Ekadasi. So a person who follows that Ekadasi, then they can get liberation, but they cannot go to the supreme destination. So then Yamaraj asked, then where will sin personified go? All the different types of sinful activity, where will they reside on Ekadasi? Then Vishnu said they will reside in food grains. Five types of food grains, like dal, rice, wheat, chickpeas, and so five, all the sinful activity reside in those five types of grains. Therefore, in Ekadasi, one should not eat those grains, otherwise they commit all sinful activity. So Pujapada Bhagavan just told a nice history. There was one very religious king, his name was Rukmanga. So very strictly he used to follow Ekadasi. One time he went to one rishi named Charan Rishi. And he asked him, please tell me, what were the activities of my previous birth that I could attain, become a king? And my wife also the queen, what last life did we do? Then Charan Rishi said, as your last life, you were a very debauched person. And your wife was a prostitute. So, and somehow, without taking any water on the day of Ekadasi, she died. So because she followed Ekadasi by accident, because she died without taking or drinking anything, she became a queen. And in separation, you also died. That means you had, but by following Ekadasi by accident, you had enough pious activities to become king. Therefore, this is a little off the subject, but it's interesting. There was Saddam Hussein. He was also hanged on the day of Ekadasi. So because he was hanged right at about 5 o'clock in the morning, the Buddha said he mustn't have eaten or drinking anything, but he was hanged on Ekadasi, whether he must get also a good destination. Therefore, Rukmanga, he was very strict. Every day, every month, he would follow the two Ekadasi. So one time, he was moving in the forest and he saw one very attractive young lady who was crying. Then the king, she was very beautiful and young, and the king asked, oh young girl, why are you weeping? She said, no one will marry me because I am Mangali. Mangali means if you marry her, you'll die. So of course no one wanted to marry her. The king was a little bewildered and he said, what's your name? My name is Mohini. The king said, okay, I'll step up to the plate, I'll marry you. Then Mohini said, I have one condition. I promise that person I marry will never disobey my desire, will never go against my desire. Then king, because he was confused by last, he agreed, okay. So the king was very strict on the day before Ekadasi. People would go around bashing the bell. Tomorrow is Ekadasi, Savanan. If you do not follow, the king will put you to death or expel you from the kingdom. Everyone used to follow very strictly. So, on the day of Ekadasi, the king was prepared to follow, means complete fast, even from drinking water. Then Mohini, she said, no, my desire is that you will not follow Ekadasi. Then king was a big problem, because he'd already given his promise. Therefore the king then Mohini, she called many brahmanas. She gave them each 50 rupees and said, you should convince the king not to follow Ekadasi. Therefore the brahmanas made many false verses, postum, shmastum, postum, and they made, no, Ekadasi should not be followed by the king. Because if the king is weak, then how can he control and protect the citizens? Then someone may come and attack and capture the kingdom. Therefore the rule is the king should not follow Ekadasi. Therefore who should follow Ekadasi? Only old people, sadhus, like that. They should follow Ekadasi. Then the king said, no, I must follow Ekadasi, but he could not.
You can go. You can go or leave. I must.
He said, you can go if you want. He said, but there's one condition which you can follow Ekadasi, the king. What condition is that? The condition is you must cut off the head of your son and put it on a plate. And very smilingly, you should present that head to me. If you do this, then you can follow a courtesy. Then the king said, listen, I want a divorce.
I cannot do.
Then the wife came. She was also very religious. And she begged, no, you should do. Otherwise your words will be broken and the glory of your courtesy will be lost. Therefore the king, he was about to cut off the head of his son.
No.
Then?
He was ready to cut.
Thank you. He was ready to cut off the head of his son, but by good luck, at that time,
Krishna,
Bhagavan, the Supreme Lord came and said, don't. We were just testing your determination to follow courtesy. Who is this girl? She's not any ordinary lady. She is Maya Devi herself. Therefore, Bhagavan was very pleased and said, whoever does not follow courtesy properly, vida courtesy, then all their good activities go to Maya. Go Premanandi.
भागवत में भी एकादशी का वर्णन किया गया है महाराज अम्बरीश के द्वारा। उन्होंने द्वादशी का पालन किया और उसमें क्या क्या हुआ। यू कैन स्पीक
स्टोरी ऑफ
अबाउट अम्बरीश महाराज।
So in the ninth canto of the Srimad Bhagavatam, the narration of the story of Maharaj Amrish and Durvasa Rishi is being narrated. This is a very significant story. Also, many of you must know that our Gurudev, he has the ashram, Durvasa Rishi ashram, the very place where Durvasa Muni lived at that time, 5,000 years ago. And when we go there, we also hear the narration of the glories of Durvasa Rishi. So Maharaj Amrish, he was a great emperor of the entire world at that time. And Maharaj Amrish was very, very attached to Krishna Bhakti. There is a description there that Savaimana Krishna Padara Vindayor Achamsi Vaikuntha Gunan Varanane. Sri Amrish Maharaj was always absorbed, his mind in Krishna. Savaimana Krishna Padara Vindayor, always meditating on the lotus feet of Krishna. Achamsi Vaikuntha Gunan Varanane. His words constantly glorifying the glories of Sri Krishna. And all the limbs of his body, by his hands, he was washing the temple of the Supreme Lord personally, doing Mandira Marjana. With his legs, he was going and walking to the holy places, just like we are now going on Parikrama with our legs. So this is service, this is Pada Sevanam to the Supreme Lord. And in all different ways, Maharaj Amrish was completely absorbed in serving Krishna 24 hours daily. Even though he was emperor, he did not engage someone else in doing the service in the mandir. He himself performed archan and all the different sevas. So, being a very exalted pure Vaishnava, Sri Amrish Maharaj was a Shuddha Bhakta. And he was a pure devotee of Krishna. And he and his queen, they very carefully observed Ekadasi. They took a vow that they would observe Ekadasi, every Ekadasi, within 1 year there are 24 Ekadasis. So they took a vow that they would observe in a very, very strict way. Even the day before Ekadasi and the day after Ekadasi, they would perform it in a very strict way by curtailing the amount that they would eat. But on the Ekadasi day itself, they were performing Nirjal Ekadasi, not taking even any drop of water. So this whole process was followed by them for the entire year. And on the final Ekadasi day of that year, Maharaj Ambarish had a great procession of brahmanas, and it was a very festive occasion, and they had come there. Actually, Maharaj Ambarish lived in Mathura. So he had come there to the banks of the Jamuna River, and he was going to now, in a very ceremonious way, he was going to break his Ekadasi fast. So just within a few minutes of this time period coming, just like we have just heard that it is very important to follow the Ekadasi properly, which means also that you must break the Ekadasi during the Param time, not before, not after. But if that Param time expires, then you do not receive the benefit of performing that Ekadasi. And this, in this case, it would be the entire vow of following it for the whole year that Maharaj Ambarish would lose. So they were waiting for the appropriate moment to come. Then at that time, a very great sage, Durvasa Muni, Durvasa Rishi, came there. Durvasa Rishi, he appears to be like a Brahmagyani, a fully perfected impersonalist, powerful yogi, maha yogi. Srila Gurudev says that Durvasa Rishi is so powerful that if he simply tells you, you should die, immediately you die. He had such potency and such power. And Durvasa Rishi was also well known. And persons understood that if you displease Durvasa Rishi, that he can become very, very angry, very upset. So whenever Durvasa Rishi would appear, all the kings who would invite him to their courts, they would carefully feed him and make sure that he was appeased. So when Durvasa Rishi came, oh, Maharaj Ambarish very cordially, very respectfully greeted him, and then he invited him, oh, Durvasa Rishi, now I am going to break my Ekadasi fast and there will be a very, very big Maha feast. So I invite you to please come and also celebrate this feast with me. So then Durvasa Rishi said, yes, I will be very happy. But first, I have to go to bathe before accepting this Mahaprasad. So Durvasa Rishi went to the nearby Jamuna River, and there he began to bathe. But he was taking some time, and Ambarish Maharaj was waiting for him to return. Now this created a very serious problem, because if he would not return in time before the Param time, then Durvasa Rishi, he was not able to break his fast because it would be dishonoring this Rishi. Ambarish Maharaj would not be able to break his fast because he would be dishonoring this Rishi. It would be against the Dharmic principles, and Durvasa Rishi would become very angry. But on the other hand, if he did not break his fast, then he would lose the results of all of his fasting and all of his vows, his vrata. So then he had consulted with his brahmanas, and they advised him, there is a way that you can be saved, and that is that you can take some sharanamrita. If you take a few drops of sharanamrita, then this is considered that you have broken your fast, but also not broken your fast. Simultaneously, you can accomplish both purposes. So then Maharaj Ambarish, seeing that that moment was now coming, drawing nigh, so he decided, I better do this as the Brahmins are suggesting. So then he took a few drops of Sharanamrita from the lotus feet of Vishnu in his hands, and he sipped this along with his queen. At that time, Durvasa Rishi, who understands everything, he is all-knowing, Trikalagya, and he, such a maha, powerful yogi, he immediately understood that Maharaj Ambarish had insulted him by breaking his fast without him being there present. So now Durvasa Rishi became very, very angry. And he came out of the water and he began to approach that place. And as he was approaching from a distance, he pulled one hair out of his head, a lock of hair. He threw it on the ground. And immediately, a huge, fiery demon, very reddish, very ferocious, sprang up by the power of his mystic yoga. And Durvasa Rishi gave him the instruction to destroy Maharaj Ambarish. So now, Maharaj Ambarish, He saw this fiery demon approaching him from a distance. And he simply stood there with folded palms, completely dependent upon Krishna, only praying to Krishna. And he was feeling very badly that he had offended Durvasa Rishi. Now this fiery demon was coming closer and closer. But then what happened? Lord Narayan, who is the protector of his pure devotee, suddenly Lord Narayan, his Sudarshan Chakra, the ultimate weapon in the entire creation, immediately came there in the sky and destroyed that demon. So now, Durvasa Rishi, who was still coming near, he saw that the demon was destroyed by the Sudarshan Chakra, and then he saw the Sudarshan Chakra now turn toward him and began to pursue him. So Durvasa Rishi, he began to feel very, very much fear for his life, and he took off, began to fly through the airways, and began to travel all throughout the entire universe. And as he was traveling, from behind him, the Sudarshan Chakra was chasing him and chasing him. And it was burning him also from behind. But wherever Durvasa Rishi went, Sudarshan Chakra also chased after him. So first of all, Durvasa Rishi, he went to Lord Brahma. And he begged Lord Brahma, "Oh, please, please, somehow or other, help me. I don't know what to do now. This Sudarshan Chakra is going to kill me." Lord Brahma told him, "I'm sorry, I cannot help. This is the ultimate weapon of Lord Narayan, Lord Vishnu. I have no power, no jurisdiction in this area. Oh, you can go to Lord Shiva. He may be able to help you." Then immediately he rushed toward Lord Shiva. And when he came to Lord Shiva's abode, Lord Shiva also told him, "I'm sorry, I cannot help you. This is the weapon of my worshipful lordship, Lord Narayan. Oh, you must go to him. He is the only one who can help you." So then Durvasa Rishi, with his mystic power, he went to the abode of Lord Kirtakshay Vishnu within the material universe. And there, as he approached Lord Vishnu, he fell down at the lotus feet, doing Dandavat pranams in front of Lord Narayan, and begging and begging, "Oh please, please, please save me from the Sudarshan Chakra." Then Lord Vishnu, he looked at him and he said, "I cannot save you. Because aham bhakta parahino yasmatantra ivadvija sarvir krasta hridayam bhaktaya bhakta jana priya. Aham bhakta parahino. I am completely subservient to my bhakta. Yasmatantra ivadvija. Oh Brahmana, I am not independent of my pure devotee. Sarvir krasta hridayam. I am always in the heart of my pure devotee, Bhaktaya Bhakta Janapriya. And even the bhaktas of my bhaktas, they are very dear to me." So then, what is it? Sadhunam Hridayam Mahyam. Yes, the sadhus, they know nothing but me. They are completely absorbed in me, and I also do not know anything but my sadhus, my pure devotees. So if you want to be saved from the Sudarshan Chakra, I'm sorry, I can't help you. You're going to have to go to this great pure devotee, my pure bhakta, who you offended. You're going to have to fall at his lotus feet. Only he can help you. So immediately Durvasa Rishi took the instructions of Lord Narayan, and very quickly, he came back through the airways, and he came back to this earth planet, and he came back to the place where Ambarish Maharaj had been standing. It was going on one whole year that Durvasa Rishi was chasing all over the universe, but Maharaj Ambarish didn't move from that place for the entire year. And then, when Durvasa Rishi came and fell at the feet of Ambarish Maharaj, immediately Ambarish Maharaj prayed to the Sudarshan Chakra, and immediately hovering in the sky, the Sudarshan Chakra of Lord Vishnu now desisted from attacking Durvasa Rishi, and the Sudarshan Chakra began to disappear and go away. And then at that moment, now Durvasa Rishi, who was completely astonished, he said, "On this day, on this very day, this blessed day, I have seen the glories of the pure Vaishnavas, of the pure devotees. Because those pure devotees, they have no envy against anyone.
In this case I have seen, even I tried to kill this pure bhakta, Maharaj Ambarish. But what did he do? Only he prayed for me. He prayed that I would be saved. So in this way, Durvasa Rishi, he glorified Maharaj Ambarish. And Ambarish Maharaj very happily embraced him and forgave him of the offense. And then he invited him to take Mahaprasad with him, and they sat and observed a great feast. So in this way, Durvasa Rishi actually glorified Maharaj Ambarish. Durvasa Rishi is a partial manifestation of Lord Shiva, who is Vaishnava Yata Shambhu. He's the greatest of all Vaishnavas. So Lord Shiva, actually he always plays this role as Durvasa Rishi of so-called Brahmagyani, but actually he is a great bhakta, great Vaishnava, and in this way he showed the glories of the pure devotee Maharaj Ambarish. So by hearing this story, we understand that the pure devotee of Krishna, he is very, very dear to Krishna, and one must be very careful not to commit any offenses against such bhakta. And if for some reason offenses are committed, there is only one way to be forgiven, and that is to go to that very Vaishnava that one has surrendered to and beg forgiveness at his lotus feet. So by the glories of Maharaj Ambarish, we understand what is the position of a pure Vaishnava, a Shuddha Bhakta, and how he very carefully observed the Ekadasi Vrat.
Ekadasi का तात्पर्य है, हमें पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय और मन, एकादश इंद्रिय हैं 11। उस दिन महाराज अम्बरीश जैसे अपने समस्त इंद्रियों को भगवान में लगा देते थे। एकादशी के दिन में केवल उपवास से नहीं होगा, उपवास तो जरूरी है और उसके साथ में मन से भगवान का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण, कान से भगवान की लीला कथाओं का स्मरण, मुख से भगवान की लीला कथाओं का और नाम का कीर्तन, अपने समस्त अंगों से भगवान को प्रणाम करना, धाम में परिक्रमा करना, इत्यादि एकादश इंद्रियों को उस दिन भगवान में लगाए, इसलिए एकादशी व्रत। दूसरी बात, एकादशी के दिन से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्र हम लोगों के शरीर को, रस को खींचता है, इसलिए एकादशी यदि खींचता है तो उससे बहुत प्रकार का रोग होता है। इसलिए एकादशी का उपवास करें तो चंद्र का वह प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है, शरीर निरोग होता है। और भी 7 दिन के बाद में, 6 दिन काम करने के बाद में सरकारी दफ्तरों में 1 दिन की छुट्टी रहती है, इसलिए 6 दिन खाने के बाद में 1 दिन उपवास देने से शरीर स्वस्थ रहता है और भजन के अनुकूल रहता है, इसलिए भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, वहां के पंडित लोग कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, खूब महाप्रसाद खाते हैं। तो एक दिन एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में सब भक्तों को साथ लेकर के उस दिन कीर्तन कर रहे थे एकादशी का, और उपवास में थे। पंडे लोग जगन्नाथ जी का बहुत सुस्वादु प्रसाद लेकर के उनके पास में आए और उनके सामने रख दिया। महाप्रभु जी ने स्तव स्तुति वंदना आरंभ की और सारी रात महाप्रसाद का परिक्रमा किया और कीर्तन में बिता दिया। सवेरे हुआ तो समुद्र में स्नान करने गए, वहां से आकर के अपना अन्नहिक इत्यादि किया और सब वैष्णव को प्रसाद दिया और अपने भी प्रसाद दिया। महाप्रभु ने उपवास रखा था, तब हम लोगों को भी जरूर उपवास रखना चाहिए। वृंदावन में भी एक संप्रदाय है जिसके प्रथम आचार्य एक समय अपने गुरु गोपाल भट्ट के पास में गए एकादशी के दिन में और देखा जे पान खा रहे हैं। उनके गुरु ने जी ने कहा जी आज एकादशी के दिन में पान खा रहे हो, पान तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए, किंतु एकादशी के दिन तुमने लिया। तो हाँ जी लिया। अच्छा तो ठाकुर को ये ठाकुर को भोग लगा है इसलिए हमने लिया। तो ठाकुर जी को जो चावल दाल और सब अन्न भोग लगता है उसका क्या करते हो? तो उसको भी हम प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद का आदर करना चाहिए। तो जाओ तुमने अपने शिष्य, तुम हमारा शिष्य नहीं है, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं, प्रत्याग कर दिया। तो वो कहीं जमुना में गए, जमुना में कूद करके प्राण छोड़ दिया और तब से उस संप्रदाय के लोग हम लोगों के संप्रदाय से अपने अर्थात गोपाल भट्ट के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रखते और अपना अलग से ही संप्रदाय रख दिया है ना। और एकादशी नहीं खाते हैं, चावल दाल कड़ी और परमान्न खीर लड्डू सब कुछ खाते हैं। आप लोग एकादशी करेंगे, यू मस्ट डू एकादशी। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एकादशी, नो मर्सी ऑफ कृष्ण, नो मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ठीक
So, Sri Guruji is saying, what is the real meaning of ecology? Only fasting on this day cannot be called complete ecology. Therefore, ecology means 11. Therefore, because we have 5 gyanindriya, senses by which we accumulate knowledge, like eyes, ears, mouth, nose, and sense of touch. Also, we have 5 karmindriya, senses by which we perform activity, means this. Sense of the power of speech, the power of moving arms and legs, power of digestion, and 2 others. These 10 plus the mind are 11. So really, ekadasi means to completely engage these 11 senses in the service of Hari Guru Vaishnava. Just like Ambarish Maharaj did, ekadasi does not simply mean fasting. Therefore, by mind we should remember Krishna. By ears we should hear the topics of Krishna. By mouth we should chant the names and activities of Krishna. By feet even we can perform the service of circumambulating the holy dham, parikrama. There are many other good reasons to follow ekadasi, despite bhakti. You should know that the body is composed of 85% water. Therefore on the moon attracts the water. Therefore we have high tides and low tides. Therefore, on this day, if we fast completely, the excess water in the body will be dispelled and that person will never experience any disease. Also, even the ordinary mundane government, 6 days you work and the 7th day you rest. Therefore, if the body is just moving, the body should also have 1 day of rest. By fasting on the ekadasi, the digestion and all the bodily functions of the body will be healthy. So you know that in Jagannath Puri, none of the pandas follow ekadasi. On that day, they eat everything. But Chaitanya Mahaprabhu was a very strict follower of ekadasi. Therefore, the pandas were worried how we can make Chaitanya Mahaprabhu break his vow of ekadasi. There, on the day of ekadasi, Chaitanya Mahaprabhu was engaged in kirtan, the chanting of the name, and fasting completely. Therefore, on this day of ekadasi, the priests of Jagannath Puri bought many, many nice types of Jagannath prasad, sweet rice, malpura, so many different types of sati. And they said, you know the glories of the prasadam of Lord Jagannath. Therefore Chaitanya Mahaprabhu kept all the prasadam in the middle of the courtyard, and him along with all his devotees chanted the holy name and circumambulated the Mahaprasad all night. After doing dandavats and offering prayers to the Mahaprasad. Then in the morning Mahaprabhu went into Bhav, performed the chanting of his Gayatri, then with all the devotees they took the Mahaprasad. Therefore, Mahaprabhu taught us, those in his sampradaya must follow courtesy. If you have one sampradaya, don't mention any names, but their acharya was one disciple of Sri Gopal Pada Goswami, one of the six Goswamis. Then on the day of courtesy, that so-called disciple came to Sri Gopal Pada Goswami chewing pan, betel nut. Then Sri Gopal Pada Goswami said, why are you eating the pan? Today is a courtesy. He said, but Gurudev, this is the Mahaprasad coming from the deity. He said, still I told you not to take any courtesy. All the rice and the prasad that we offer to Krishna, what do you do with that? He said, Gurudev, I also take that. That's also the mercy of Krishna. Then Sri Gopal Bhada Goswami rejected him. If you do not follow the courtesy or my words and you are not my disciple, get out from here. Then he went to the bank of the Yamuna and gave up his body. Therefore, even today, those sampradaya have no relation with the Gaudiya sampradaya, and on the day of courtesy, they do not follow courtesy, they eat everything. Therefore, unless we follow courtesy, we cannot achieve the mercy of Krishna.
Brihat Bhagavatamritam. Kal hum logon ne Vrindavan ke sambandh mein batlaya tha. बहुत सुंदर वृंदावन है. वृंदावन वृंदा समूह गाय के समूहों को, गोपियों के समूह को, गोपों के समूह को, यहां तक कि कृष्ण को भी ये वृंदावन पालन करते हैं. इसलिए ये वृंदावन है. वृंदावनम सखी वो वितनोति कीर्तिम जब देवकी सुत पदम भुज लत्त लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रख्याद सान्वाद अवर्तानि समस्त सत्तम. ये कृष्ण गोचारण करने के लिए गए हैं और वहां पर कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और गोपियां अपने घरों से उस बंसी को सुन रही हैं और उसके भाव में विभावित हो गई और एक दूसरे से इसे कह रही है. कोई गोपी कह रही है, सखी ये वृंदावन कृष्ण के चरणों के स्पर्श से स्वर्ग से भी ये अधिक महान बन रहा है, पृथ्वी का कीर्ति विस्तार कर रहा है. यहां के मयूर कृष्ण की बंसी नाद को सुन करके उसे मेघ गर्जन समझ करके नृत्य करने लगते हैं और जितने भी प्राणी हैं गोवर्धन के शानु देश में बैठ के चुपचाप सुनते हैं. सारी क्रियाओं को बोलना, उठना, बैठना, उड़ना सब भूल जाते हैं. ऐसे यहां पर वृंदावन है. इस प्रकार से महाराज परीक्षित अपनी माता को ये सब श्लोक सुना करके कह रहे हैं. कृष्ण अपने समस्त सखाओं के साथ और गोप गायों के साथ में वृंदावन में प्रवेश किया. कहां से प्रवेश किया? छठीकरा ग्राम से. और समस्त प्राणियों को मोहित करने वाला वेणु बजाया. उस वेणुनाद को श्रवण करके ब्रज के घरों में रहने वाली गोपियां भी प्रेम रस में निमग्न हो गईं और किसी एक गोपी ने कहा, हे राधे, सखी राधे, इस वृंदावन का महात्मा इस समय तो केवल स्वर्गलोक नहीं, ब्रह्मांड के ऊपर उठकर और नारायण के धाम को भी, वैकुंठ को भी पाकर, द्वारका और मथुरा को भी पाकर वृंदावन में गोपियों के कर्णों में प्रवेश कर रहा है। अथवा सभी लोगों से अतीत वैकुंठ लोक से भी भूलोक की कृति का विस्तार कर रहा है। स्वर्ग में या द्वारका में, मथुरापुर मथुरा में, गोलोक धाम में कृष्ण की बंसी नहीं बजती, उनका गोप वेश भी नहीं रहता है, या वृंदावन में ही होता है जहां पर कृष्ण अपने चरणों में नाना प्रकार के चिन्हों को धारण कर नंगे पांव जहां पर के विचरण करते हैं। रामलीला में भी विचरण तो किया, किंतु उनकी पृथ्वी की उस समय उतनी शोभा नहीं हुई जितनी की शोभा हुई वृंदावन में। इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को पाकर के लक्ष्मी की संपूर्ण शोभा इस वृंदावन ने प्राप्त किया है। यहां पर लक्ष्मी जी स्वयं झाड़ू देती हैं, यहां के पौधे वृक्ष लताओं को पूर्ण रूप से हरा भरा रखती हैं, जिससे कृष्ण आनंद के साथ में इसे क्रीड़ा करें। यहां पर श्री मद पदाम्बुज जुगल कहने से भगवान की पादुका को मत समझना, उनके चरण कमलों को ही समझो। चरण कमलों को ये वृंदावन प्राप्त करता है, खाली पैर में चलते हैं, कंकड़ और पत्थर चुभेंगे, वृंदा देवी ने पत्थरों को रबड़ के समान में इतना सुंदर सुकोमल बना दिया है कि कृष्ण के चरणों में चुभते नहीं है। अथवा कृष्ण के सुकोमल चरणों के स्पर्श से यहाँ के कांटे कंकड़ भी बहुत मुलायम कमल की पखुड़ियों के समान हो जाते हैं। इसलिए वृंदावन की वैकुंठ से भी अधिक महिमा हो, और भी कर रहे हैं, इस वृंदावन में कृष्ण गौओं का पालन करते हैं, पेड़ से सब वेद ध्वनु को शरण करके मयूर समझते हैं आकाश में मेघ गर्जन कर रहा, और वो पंखों को फैलाकर एकदम नृत्य करने लगते हैं। उस समय कृष्ण की वेणु ध्वनि पर जो नृत्य करते हैं मानो मयूर प्रसन्न हो जाते हैं, ओ तुम अच्छा वाद्य बजा रहा, इसलिए पंख झाड़ करके एक छोड़कर छोड़ देते हैं और कृष्ण को देते हैं, और कृष्ण पुरस्कार समझकर अपने सिर पर उस मयूर पंख को धारण करते हैं। विशेष करके धारण करते हैं किस लिए, उसमें राधा जी का नाम है, राधा जी का नाम है मयूर पंख में, इसलिए कृष्ण को बहुत ही प्यारे हैं। उस समय जितने भी पक्षी, कोयल है और सुंदर गान करने वाली कोकिल, पपी है, और जितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं, वे कलरव करना, गाना बंद कर, आंख बंद कर, मयूर का नृत्य कैसे हो रहा है और कृष्ण कैसे बजा रहे हैं, अपने कानों से उसको पान कर रहे हैं। गवान गवेंद्र गायों के अधिपति अथवा गोविंद पद से गौओं के साथ लीला रसी मयूर पंख और गुंजा से बने हुए कानों के भूषण कदम्ब के फूल कानों पर रख करके कृष्णा बलदेव जी के साथ में गोचारण कर रहे हैं। उनके हाथों में बेड़ू है, बंसी प्रिय सखी, ये बंसी कैसी है? कृष्ण की प्रिय सखी है, उसको कभी छोड़ते नहीं है कभी भी। महामाधुर्यमयी धर्मी गोविंद होने की अपेक्षा न करके ये वृंदावन अपनी इसी कीर्ति से वैकुंठ की महिमा को भी पराजित कर रहा है। यहां पर देवकी सुत पदाम्बुज, देवकी सुत माने देवकी का ही, जसोदा जी का नाम दूसरा नाम देवकी है इसलिए देवकी, देवकी नंदन। लब्ध लक्ष्मी पद का तात्पर्य है किसी समय में कृष्ण सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए इंद्रलोक में गए, पारिजात पुष्प को लाए, तथापि स्वर्ग को वृंदावन के समान श्री चरण कमलों की का चिन्ह उसको नहीं मिला। इंद्र के साथ में युद्ध हुआ, वो भी गरुड़ के ऊपर में चढ़ करके उन्होंने युद्ध किया, उनके चरण के चिन्ह स्वर्ग इत्यादि में नहीं पड़ता है, यहां तक कि बैकुंठ में भी नहीं। इसलिए वृंदावन की ऐसी शोभा संपत्ति है। विशेषतः गोविंद की मोहन वेणु के मंत्र से सुंदर स्वर से आकर्षित होकर के लक्ष्मी वहां आती हैं, वृंदावन की सेवा करती हैं, सुंदर सुंदर कुंज बनाती हैं, लताओं में सुंदर पुष्प और फल लगाती हैं, वृक्षों में इतना सुंदर फल लगाती हैं कि वो झुक जाते हैं। उनकी वेणु ध्वनि को सुनकर मयूर आदि सभी प्राणी सब चेष्टाओं को भूल करके और मयूर का नृत्य सुनते हैं, देखते हैं और कृष्ण की बंसी सुनते हैं। अवतारणी समस्त सत्वम अवर निवृत्त हो जाना, कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनते ही कोकिल और दूसरी दूसरी भी पशु पक्षी पपी है सब चुपचाप हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इस तरह से वृंदावन का, वृंदावन की महिमा है, स्वर्ग से भी अधिक महिमा है। हंताए अम आद्रि अबला हरिदास वरिजो जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं ततो तनोति सहगुण सहगो गणयोस्तयोर्जत पानीयसु यवश कंदर कंद मूले। और एक गोपी कहती है ओहो अब लाओ गिरिराज गोवर्धन कैसे सौभाग्यशाली हैं, ये हरिदास जितने भी हैं उन सब हरिदासों से श्रेष्ठ है। तीन हरिदास हैं, युधिष्ठिर महाराज और उद्धव जी और त्रिशे गोवर्धन, ये महाराज युधिष्ठिर हरिदास हैं और उद्धव जी हरिदास वर हैं और ये हरिदास वज्र सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? कृष्ण की सेवा करते हैं, सुंदर निर्मल जल देते हैं सरोवरों में जिसमें गायें भी पीती हैं, सुंदर हरी हरी घास देती हैं जिसे उनकी गायें चरती हैं, बछड़े चरते हैं, और कृष्ण के लिए गेहूं देते हैं जिसे अपने अंगों का को रंग करते हैं, सखाओं को बैठने के लिए सुंदर आसन देते हैं, खाने के लिए केले अमरूद इत्यादि तरह तरह के फल ये सब देते हैं। इसलिए केवल कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के परिकरों की भी सब प्रकार से सेवा और पूजा करते हैं। और गोवर्धन जी का महात्मा वर्णन करते हैं, ये कहती हैं गोपियां, पूर्वोक्त गोपियों में से कोई दूसरी गोपी हंतायम, बड़े आनंद से हर्ष से कहो गिरिराज गोवर्धन कितने गोवर्धन, ये बड़े सौभाग्यवान हैं। हंत का प्रयोग हर्ष में या विस्मय या आश्चर्य रूप में कह रहे हैं। अयम उनकी दृष्टि में गोवर्धन में तो है नहीं, अपने घरों में है, किंतु उनके हृदय में गोवर्धन की स्फूर्ति हुई और अंगुली दिखला करके कह रही हैं, सखी देखो हम अबला हैं, हम में शक्ति नहीं है कि धैर्य और लज्जा आदि के बेड़ियों को छोड़कर तोड़कर कृष्ण से मिल सके। और हरिदास गोवर्धन कृष्ण उन्मुक्त भाव से उनके ऊपर में खेलते हैं, उनके कुंजों में तरह तरह की लीला करते हैं, गोवर्धन का कितना सौभाग्य है। श्री हरि जिस प्रकार से सबके संपूर्ण पापों को दुखों को और चित्त को हर लेते हैं, गोवर्धन भी उसी प्रकार से, क्योंकि कृष्ण ही गोवर्धन बने हुए हैं, हमारे सारे संकटों को चिंताओं को सबको हरण कर सकते हैं। यदि कोई गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और एक लता को दूसरे लता से जोड़ देते हैं, वृक्ष की जालियों को जोड़ देते हैं, समझते हैं कि ये विवाह करना चाहता है या चाहती है, विवाह करा देते हैं। एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट तीसरा ईंट दे दो, इतने तल्ले का मकान बनाना चाहते, जाओ तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और जो कृष्ण की सेवा या राधिका जी की सेवा करना चाहते हैं उसके लिए चिंता करते हैं, जो अपना धन हम कैसे दे। तो यदि और कुछ नहीं चाहता, राधा दास्य ही चाहता है, तो उसको राधा दास्य ही दे देते हैं, इतने बड़े कृपालु हैं। इसलिए हम लोग हमारे संप्रदाय में गोवर्धन जी को हरिदास वर्ज्य श्रेष्ठ हरिदास कहते हैं, उनको भगवान के रूप में नहीं, भगवान के रूप में उतना सुंदर वर नहीं दे सकते हैं जितना कि गिरिराज के रूप में दे सकते हैं। इस तरह से गिरिराज जी का गोपियों ने गोपी वेणु गीत में ये वर्णन करती हैं, और भी वृंदावन की ये बहुत ही गुणगान करेंगी। आज हम लोग यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर 10 दिन हैं, 10 दिन तक थे, यहाँ के पंडा जी ने हम लोगों को सब दर्शन कराया, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से तो पंडे आज एक एक आदमी से 100, 200, 400, 1000, 2000 रुपए ले लेते हैं, किंतु आप लोगों से निवेदन है कि पंडे के लिए जितना आप लोग दे सकते हैं खुशी से आप लोग अवश्य दें। अपनारा पंडार जन्य अवश्य कुछ दक्षिणा प्रदान करबें, नचे हमारे परिक्रमा सफल होए ना। ओ वी आर मूविंग हियर ट्रैवलिंग हियर फॉर 10 डे एंड पंडा इज हेल्पिंग एंड आवर दिस इज रीति दैट वी ऑल्सो गिव सम दक्षिणा टू पंडा जी। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गिव सम डोनेशन फॉर पंडा, ब्रह्मचारी विल गो एंड कलेक्ट। ओ यू कैन गो टेक, you can take donation from even brahmachari sannyasi because they have some money, they are not empty pocket, they must they give something. Oh what, no money? Oh so then you should give something, so you should give. Oh aur log sab chale jao, mahilaye उठो जाओ जाओ ले जाओ ऐसे कपड़े लेकर के और सबसे ले आओ All sannyasis also, have you given? I know that your pocket is very heavy. तबियत ठीक हो गई? तबियत ठीक है? आपका देने हमको आसानी हमारा एक दिन में ही ठीक हो गया। आप ले लेते हैं
उसे? ये हमारे यहाँ के विधायक हमारे झारखंड का हमारे मकान है
आपको हमारा धन्यवाद आशीर्वाद है
हमारे दूसरे कृष्णा है दूसरे कृष्णा के समान है अच्छा आप सारा देखभाल करते हैं
बहुत
अभी आप लोग देश का ही कल्याण करेंगे जैसे अच्छे तरह से देश में सुशासन हो सके आजकल देश कुछ भ्रष्ट हो रहा है इसलिए आप लोग सच्चे पद पर भाषण करके और लोगों का कल्याण करें ठीक है हमारा आशीर्वाद है
आएंगे के बाद दिवाली के बाद
आप गोवर्धन में दिवाली में आइए गोवर्धन में
Going towards Chatika at Govardhan. He plays his flute and captures the mind of everyone. Hearing the sound of Krishna's flute, even the gopis in the house become intoxicated and maddened. Therefore, one gopi says to another, O Radharani, what to speak of the heavenly planets? What to speak of the other heavenly planets after Brahmalok? What to speak of Brahmalok? This Vrindavan is even more opulent and more beautiful than even Vaikuntha, Dwarka, or Mathura. And this flute sound has crossed all and entered into the ears of the gopis. In the heavenly planets, in Dwarka, in Golokapinda, in Golok, and in Vaikuntha, there is no flute. Krishna there is not dressed as a cowboy. These things are only available in Vrindavan. Therefore Krishna marks Vrindavan with his naked feet, with his bare feet, sorry. On Krishna's feet there are 19 signs.
Mata Maharaj ke diye.
These signs cannot be seen anywhere else. They can only be seen in Vrindavan.
Give it to Mata Maharaj.
If this Vrindavan is so attractive, it is so in the heart, even of Lakshmi. Therefore she also comes to Vrindavan and performs menial services like sweeping Vrindavan. Hearing Krishna's flute, the trees become maddened and in happiness they blossom many flowers and produce many fruits, therefore they bow down to Krishna. In Vaikuntha and other places, you should understand that Padam Bhuja Labdha Lakshmi, here Padam Bhuja does not indicate the shoes of Krishna. Because in Vrindavan, Krishna goes cow grazing, there are no shoes. They were here, yet Padam Bhuja means he's bare feet. Krishna's feet are so soft that even the thorns and hard stones of Vrindavan become very soft like the petals of a lotus. Then when Krishna goes cow grazing and plays upon his flute, then the deep rumbling of the venue resembles the thunder coming from the clouds. Therefore clouds and rain are very dear to the peacock. Therefore hearing the deep sound of Krishna's flute, the peacocks begin dancing. When Krishna's flute set playing is so nice, the peacocks give a donation of their feather to Krishna. And Krishna keeps that feather upon his head very carefully with great love and affection. Therefore that peacock feather is also so dear to Krishna. Hearing Krishna's flute sound, birds like cuckoos and quails become stunned. They cease their restless activities of chirping and singing. And with open eyes, they drink the beauty of the scene of Krishna dancing surrounded by the peacocks. How is Krishna looking? With his dark blue complexion, with a vanamala, a garland of five different types of flowers, with a nandini upon his ear. He is called Govinda because he is the Indra of the cows. That flute is very dear to him, Prema Bhansi Piyasaki. That flute is so dear to Krishna, never leaves his hand. Therefore, when Krishna enters Vrindavan, the beauty of Vrindavan defeats the opulence of Vaikuntha. Yet Devaki Sutta Pandam Puja Rakta Lakshmi, which Yasoda Devi has two names. One is Devaki. Therefore, Devaki Nandan means here Sri Yasoda Nandan, Sri Krishna. Therefore, Lakshmi left the Vaikuntha to come to this Vrindavan. Pandam Puja Rakta Lakshmi. Why did Lakshmi come to Vrindavan? What could she attain here that she could not attain anywhere else? When Krishna went to the heavenly planets to take the Parijat flower to pacify his queen Satyabhama, at that time Krishna was fighting with all the demigods headed by Indra. Therefore, when Krishna did not descend to the ground because he was fighting from the back of Garuda. Therefore, even in the heavenly planets, there is no footprints of Krishna. Therefore, Krishna's Mohan Venu, his flute which bewilders everyone. By that mantra, he made even Lakshmi mad, and she left the Vaikuntha and came to this Vrindavan to serve. Therefore, Vrindavan offers flowers and fruits, and she serves Krishna in many ways. Vrindavan's glories are described everywhere. Antiyatri abara haridasa bhajo nirvana krishna chanima spashika maulibaha. One gopi says, O Sakhi, just see the glories of this Dhiraj Govardhan. He is your gopika pramurita haridasa bhajo. He is the best of the servants of Hari. Scripture has described three haridasas. The first haridas is Yudhisthira Maharaj. But superior to him, Haridas Bhag is Sri Udhavji. But superior to him is Haridasa Bhaja, which is Sri Govardhan. Why is Govardhan so glorious as the best servant of Sri Krishna? Because not only does he serve Krishna directly, he also serves Krishna's associates. By offering fruits to the cowboys, grass for the cows, water, minerals which decorate Krishna's body, he provides platforms for the sake of the cowherd boys to sit on. He produces fruits like guava and mangoes for the enjoyment of Krishna and his associates. Therefore, he is the topmost. Therefore, Hanta Adriyabala. Hanta means the gopis means how astonishing, how wonderful. Therefore, the gopis in their homes are seeing Govardhan in their hearts. And they are criticizing themselves. We cannot meet Krishna freely. Neither can we serve him like Govardhan. Therefore, Govardhan is most fortunate. Krishna is playing upon him and performing many lilas in his caves. Therefore, who is Govardhan? Krishna himself has become Govardhan. Therefore, he has stolen the minds of the gopis. Therefore, when we perform parikrama of Govardhan, then many people like tie little bits of thread to trees. They stick one brick on top of another brick. One. Therefore, that means by joining two tricks together, I hope I can get married by the mercy of Govardhan. One puts one brick, one stone on top of another stone. I hope I can build a big house. One story, two story, three story. Then we should not have any material desires when we perform the worship of Govardhan. Otherwise, we will be cheated. Then for that person who desires nothing else except the service of Radhika, then Giriraj also gives that. Therefore, in our Gaudiya Sampradaya, we worship Govardhan not as Krishna, not as the Supreme Lord,
but we worship
him as the servant of Krishna. Because as a servant of Krishna, he can give something that even Krishna cannot give. Therefore, the gopis glorify Vrindavan and Giriraj by this verses collected in the Srimad Bhagavatam known as Venu Geet. And we will hear many, many more glories of Govardhan tomorrow night. Go
You have heard the glories of Vrindavan. If prefer, you are going and there fake dust of Radha and Krishna and all gopis everywhere. If you walk, or the dust coming on your head and everywhere. Uddhava went and he prayed only for one dust, and you are having millions and millions of. How fortunate you! After tomorrow we will go to Govardhan, and there we will spend our 18 days there, and from there everywhere we will go by bus, and we will do parikrama of Govardhan. Don't pray any worldly boon. Only you should pray Radhika Dasyam, O Govardhan Dehi, Nija Nikat Nivasam, Govardhan. Dehi Govardhan Nija Nikat Nivasam. Oh, like this. Don't ask any worldly boon, otherwise you will be cheated. So, day after tomorrow you are leaving. Tomorrow, rest day.
Marketing day.
In morning, we will do kirtan and pravachan. And after that, you should be ready for to go your
luggage.
You should prepare your
luggage, bags
and everything. And next day, in very morning, at about 7 or 8 or 9, we will start our parikrama from here to Bahulavan, Paitha, Chandrasarovar, and other places. And in midday at about 1 or 2 we will reach Govardhan and we will be there. Gaur Prema.
हरिनाम दीक्षा के लिए निवेदन किया है।